हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। अनाही एक प्यारी सी स्माइल के साथ जाते हुए रूहान को देख रही थी। मन ही मन उसे खुशी हो रही थी कि चलो कहीं तो रूहान ने सही जगह गुस्सा किया। वहीं माधवी का तो चेहरा ही उतर गया था। उसे नहीं पता था कि उसका दांव इस तरीके से उल्टा पड़ जाएगा। उसने गुस्से से अपने पति की तरफ देखा, क्योंकि ये गुस्से वाला आइडिया उसके पति का ही था कि रूहान को अग्रेशन की दवाइयां दिलवाते हैं। वहीं जिग्नेश ने कंधे उठा दिए, जैसे कह रहा हो कि उसने कुछ नहीं किया है। वहीं अनाही अब ये सोच रही थी कि विवाह को कैसे मनाया जाएगा, क्योंकि अगर ताईजी जिद्दी है तो विवाह अल्ट्रा प्रो लेवल जिद्दी है। वो किसी से सॉरी बोलेगी ये तो जैसे रात के वक्त सूरज उगने जितना मुश्किल काम है। वहीं यही बात निवेदिता को खटक रही थी। उसने जल्दी से कहा, जीजी ऐसा क्या कह दिया उसने जिससे आपको लगता है कि वो आपकी बेइज्जती कर रही थी? वो तो सबकी कितनी रिस्पेक्ट करती है। माधवी ने गुस्से में निवेदिता को आंखें दिखाते हुए कहा, ये सब तो तुम अपनी बहू और अपने बेटे से पूछना, क्योंकि वे दोनों ही वहां मौजूद थे। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ और मुझे कोई शौक नहीं है फालतू में ड्रामा क्रिएट करने का। अगर कुछ सीरियस हुआ है तभी मैंने खाना छोड़ा होगा, और अब तो मुझे लगता है कि मैं सबको ही इतनी बुरी लगने लगी हूँ कि मुझे ये घर छोड़ देना चाहिए। उसने इतना ही कहा था कि दरवाजे से एक तेज आवाज़ आई, जो और किसी की नहीं बल्कि विहा की थी। ताई जी, मुझे भी यही लगता है कि आपको ये घर छोड़ देना चाहिए और एक लंबी तीर्थयात्रा पर निकल जाना चाहिए, क्योंकि इस उम्र में आप पर यही शोभा देता है। ये 5 साल के बच्चों की तरह गुस्सा होकर मुंह फुलाकर खाना छोड़ना आप पर कहीं से सूट नहीं कर रहा है। वेदांत, जो लगभग दौड़ते दौड़ते उसके पीछे आ रहा था, उसने बड़बड़ाते हुए कहा, इसके अंदर फिर से काली माँ घुस गई है, भगवान क्या करूँ मैं इस लड़की का। सही में किसी ने विवाह से ऐसा जवाब एक्सपेक्ट नहीं किया था। सभी को तो हंसी आ रही थी। अनाही मुश्किल से अपनी हंसी कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। वहीं माधवी ने उसकी ये बात सुनकर दांत पीसते हुए कहा, तुम मुझे मत सिखाओ कि कौन सी चीज़ बच्चों वाली है और कौन सी बड़ों वाली। विहा ने झूठी स्माइल के साथ कहा, क्यों, अपने से छोटों का ज्ञान आपको अछूत लगता है या फिर उनसे ज्ञान लेना कोई अपराध है? इतना बोलकर विहा ने अपने दोनों हाथ अपने सीने पर बांध लिए और घूरते हुए माधवी को देखने लगी। माधवी को पता था कि विहा उससे ज़रूर लड़ाई करेगी, लेकिन वो ऐसी ऐसी बातें बोलेगी कि उसकी बोलती बंद हो जाएगी, ये उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। उसे तो लगा था कि विहा उससे सॉरी बोल देगी अगर रूहान बोलेगा, पर यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। वहीं वेदांत जल्दी से विहा के पास जाकर पीछे से ही उसके कंधों को पकड़ते हुए धीरे से बोला, ताई जी, इसकी तरफ से मैं आपसे सॉरी बोलता हूँ। आपको पता है ना इसका बिहेवियर कैसा है, और आप तो वैसे भी ये प्रेग्नेंट है, तो मुझे नहीं लगता इसका कभी ऐसा मूड स्विंग्स होगा कि आपसे आकर सॉरी बोलेगी। और वैसे भी इतनी बड़ी कोई गलती भी नहीं की थी हम लोगों ने कि इसके लिए आप घर खाना ये सब कुछ छोड़ने की बातें करें। अनाही ने विहा की तरफ देखते हुए आँखें छोटी करके कहा, बच्चे हुआ क्या है, पहले ये तो बताओ उसके बाद गुस्सा करना है या नहीं वो तुम पर है। हम लोगों को बात भी नहीं पता है, हम बोलें क्या ये नहीं समझ आ रहा है। अनंत ने भी जल्दी से कहा, हाँ विहा बताओ क्या हुआ है। सबके एक साथ पूछने पर विहा को तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन वेदांत की आंखें डर के मारे जरूर फैल गई थी। उसे घबराहट हो रही थी। अब उसके प्राइवेट लव मोमेंट्स पूरे निमानी परिवार के सामने डिस्कस किए जाएंगे, और उसे पूरा पूरा भरोसा था अपनी प्यारी टमाटो पर, वो जरूर सब कुछ बोल देगी बिना किसी शर्म के। उसने जल्दी से विहा के मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, नन्हे कुछ नहीं हुआ था, बस बोल रही थी कि हम दोनों को कमरे में चले जाना चाहिए, क्योंकि हम दोनों हॉल में खड़े थे और कुछ भी नहीं हुआ था। वेदांत को खुद नहीं पता था कि वो क्या ऊटपटांग बोल रहा था। सब लोग हैरानी से देख रहे थे, जैसे किसी जोकर को देख रहे हो। अनंत ने हंसते हुए कहा, क्या इस बात पर मॉम गुस्सा हो गई तुम दोनों से कि तुम दोनों हॉल में क्यों खड़े हो, या फिर हम लोगों के चेहरे पर जोकर लिखा हुआ है जो हम तुम्हारे इस बात पर यकीन कर लेंगे? छोड़ो, विहा का मुंह उसे बताने दो, आखिर हुआ क्या है। विहा भी वेदांत का हाथ अपने चेहरे से हटाने के लिए छटपटा रही थी, और आखिर में उसने वेदांत के हाथ को दांत से काट लिया, जिसके साथ ही बेचारा वेदांत चिल्लाते हुए उससे दूर हो गया और फिर अपने हाथ पर फूंक मारते हुए घर कर विहा को देखने लगा, जो खुद भी उसे घायल शेरनी की तरह गुस्से में देख रही थी। विहा ने फिर दांत पीसते हुए धीमी आवाज में कहा, आप तो कमरे में चलो, मैं आपको कमरे में बताऊंगी, झूठा आदमी कहीं का। इसके बाद विहा ने सामने की तरफ देखते हुए कहा, वो हुआ ऐसा था कि मैं वेदांत से कुछ पूछ रही थी, और उनका ऐसा है कि वो मुझे कुछ समझते हैं तो उससे पहले मुझे पैम्पर करते हैं, इसीलिए उन्होंने मेरे गाल पर किस करते हुए मुझे कुछ बताया, तो फिर ताई जी को पता नहीं क्यों वो अश्लील लग गया। उन्होंने कहा कि ये सब हमें अपने कमरे में करना चाहिए। अब हम कौन सा सबके सामने इंटीमेट हो रहे थे जो ये ऐसी बकवास कर रही थी, इसीलिए मैंने कहा कि हम दोनों पति पत्नी हैं, कम से कम बाहर हम गाल पर तो किस कर ही सकते हैं, इसमें कौन सी बुरी बात थी। और इसी बात पर ताई जी को लग रहा है कि मैंने उनकी इंसल्ट कर दी, लेकिन मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं था। अब इसके लिए मैं तो कभी सॉरी नहीं बोलूंगी, आप सब बताओ इसमें क्या बुरा था। रूहान का चेहरा तो शर्म से लाल हो गया था। कहां वो वीहा को कुछ बोलने वाला था, अब उसकी बोलती बंद हो गई थी। वहीं बाकी सबको हंसी आ रही थी, क्योंकि वीहा ने बताया ही कुछ इस तरीके से था कि चाहे बात कितनी भी सीरियस होती, सबको उसके एक्सप्रेशन देखकर ही हंसी आ जाती। तो ऐसे आईब्रो चढ़ा चढ़ा कर सब कुछ बता रही थी, बिल्कुल किसी छोटी बच्ची की तरह। वीहा ने जब देखा कि सब सिर्फ मुंह दबाकर हंस रहे थे, तो उसने अपने दोनों हाथ कमर पर रखते हुए कहा, क्या मैंने कोई जोक मारा है या फिर मैं गलत हूँ? आप लोग हंस क्यों रहे हैं? बताओ मुझे, क्या मैंने कुछ गलत कहा है? क्या मुझे ताईजी से सॉरी बोलना चाहिए? अनंत ने हंसते हुए कहा, नहीं, हमें तुमसे सॉरी बोलना चाहिए कि तुम्हें यहाँ आना पड़ा। इतना बोलते बोलते ही अनंत को और तेज हंसी आ गई। उसने फिर से एक गहरी सांस लेकर अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए कहा, तुम्हें यहाँ आना पड़ा और ऐसी एक्सप्लेनेशन देनी पड़ी, उसके लिए रियली सॉरी, और तुम कहीं से भी गलत नहीं हो। इतना बोलकर उसने माधवी की तरफ देखा, जो खुद हैरानी से वीहा को देख रही थी। उसे लगा नहीं था कि ये लड़की इतनी ज्यादा बेशर्म होगी। उसके कान भी शर्म से लाल हो गए थे और उसकी नजरें झुकी हुई थीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्या करवाना चाहती थी और क्या हो गया था। सबको ही हंसी आ रही थी, कोई भी इस बात को सीरियस नहीं ले रहा था। वहीं माधवी को तो लगा था कि वो सबको ही अनाही और वीहा के खिलाफ भड़का देगी, क्योंकि सब लोग वीहा को डांट लगाएंगे तो मन ही उसकी साइड लगेगी, जिसके बाद पूरा घर दोनों बहनों के खिलाफ हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो उसका ही पोपट बन गया था। रूहान ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ताई जी, आई होप आप समझ गई होंगी। अब आप खाना खा लीजिए, मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी बड़ी बात थी। ये दोनों शादीशुदा हैं, इतना सब कुछ तो हो ही सकता है, हम इतना मॉडर्न तो बन ही गए हैं।
वीहा ने जल्दी से खुश होते हुए कहा, हाँ जीजू, थैंक यू सो मच, आपने मेरी साइड ली। यहाँ सबको तो सिर्फ हंसी ही आ रही है, कोई मेरी साइड नहीं ले रहा है। इतना बोलकर उसने गुस्से से वेदांत को देखा, जिसे तो हंसी भी नहीं आ रही थी। उसे बेचारे के चेहरे का रंग भी उड़ा हुआ था।